बच्चों बालक बालिकाओं समाज संघ सदस्य, आज 3 अक्टूबर 2020 का दिन आप सबके लिए मंगलमय हो। आज हमारे भारत का एक ऐतिहासिक दिवस है। हमारे प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी मनाली पधारे हैं और उन्होंने अटल टनल का उद्घाटन भी किया। इतिहास अपने में एक अनोखी हमारी यादें हैं। अगर इतिहास ना होता तो हम प्राचीन काल को कैसे जानते। इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो आदि जो सबसे पहले का इतिहास था, और दूसरा इतिहास हमारा वो इतिहास है जिसको हम मध्यकालीन इतिहास कहते हैं, और तीसरा आज वर्तमान युग है जिसको हम वर्तमान इतिहास कहते हैं। अब मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 65 श्लोक सुनाती हूँ। मन मना भव मद भक्तो मध्य जीमा नमस्कार मामे दैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने पीवसी। तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा, मुझे नमस्कार कर, ऐसा करूँ तो तुझे प्राप्त हो जाएगा। ये मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। श्लोक 66 सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज हम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। यही हमारा श्लोक हम सबको बड़ा प्रिय। हम बार बार श्लोक को पढ़ते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं और श्लोक से हम बड़ी प्रेरणा पाते हैं। हम बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं इससे कि हमें क्या करना है, आखिर भगवान की शरण में जाना है। अगर शरण में जाएंगे तो हम सब पापों से मुक्त हो जाएंगे और भगवान के बन जाएंगे सदा सदा के लिए। भगवान का आश्रय लेना और अपने लिए कुछ न करना, ये गीता का तात्पर्य है। इसलिए साधक के लिए सबसे मूल्यवान वस्तुएं दो ही हैं। प्रथम है भगवत आश्रय और विश्राम। श्री आदि पदार्थों का आश्रय प्राश्रय है और क्रिया का आश्रय परिश्रम है। परमात्म प्राप्त पदार्थ और क्रिया के द्वारा नहीं होती, पदार्थ और क्रिया के स्वर्ण विच्छेद से होती है। जब साधक पराश्रय का त्याग करके भगवान का आश्रय अपनाता है और पेशों का त्याग करके विश्राम को अपनाता है, तब उसका मानव जीवन सफल हो जाता है। श्लोक है 67 इदम तनाथ पस्काय नाम भक्ताय कदाचन न चाशु शुश्रुवे वाच्यम न चा माम यो अग्नि सूयति। ये सर्व गुहया तुम वचन तुझे आत्मपस्वी को नहीं कहना चाहिए। किसको आत्मपस्वी? मतलब जो तप नहीं करता है, जो तपस्वी नहीं है, उसको ये बड़े सीक्रेट जो है नहीं बताने चाहिए। अभक्त को भी नहीं कहना, अभक्त को जो भगवान को नहीं मानता, नास्तिक है तथा जो सुनना भी नहीं चाहता है उसको भी नहीं बताना चाहिए। और जो मुझ में दोष दृष्टि करता है, जो कहता भगवान क्या है ही नहीं, तो ऐसा है वैसा, उसको भी नहीं कहना चाहिए। 68 श्लोक या इदम परम गुहम मद भक्त शुभा धास्यति भक्ति में तमाम कृत्वा मामे वैश्य संशया। मुझ में पर भक्ति कर परम गोपनीय संवाद को मेरे भक्त में कहेगा, मैं मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन किसको सुनाना चाहिए? जिसमें भक्ति हो, पराभक्ति हो, जो भगवान को ही अपना माने। 69 श्लोक न चा तस्मान मनुष्यु कश्चि में प्रिय कितमा भविता न चा मे तस्मान धन्य प्रिय तरो भूमि। उसके स्मान में अत्यंत प्रिय गाय करने वाला मनुष्य कोई भी नहीं है इस मंडल पर, उसके स्मान में दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं। भगवान कहते हैं जो मेरी इस वाणी को, मेरे इस उपदेश को भक्त को सुनाता है तो बहुत बड़ा काम है। ऐसा मनुष्य भूमंडल पर उसको स्वामी मेरा दूसरा कोई प्रिय तर प्रिय तर बहुत प्यारा श्लोक 70 संवाद माधव ज्ञान तेनाहम श्यामती जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्म संवाद का अध्ययन करेगा मैंने गीता का अध्ययन करेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। ये ज्ञान यज्ञ हम गीता एक दूसरे को सुनाए सुने समझे समझाए कि ये क्या बन जाता है ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ से भी श्रेष्ठ है। जो गीता का अध्ययन करता है उसके द्वारा भगवान ज्ञान यज्ञ से पूजित होते हैं। जब गीता के अध्याय मात्र का अध्ययन मात्र का इतना महात्म्य है कि इसके अनुसार अध्ययन करने का कितना महात्म्य होगा। नहीं आए कि पिछला पुराना संस्मरण याद आ गया लगभग जब मैं 5 मिनट जैसा अपनी कक्षा में पढ़ती होगी तो उसमें का एक संस्मरण याद आता है कि मैं प्रातः उठकर नहा धो करके बाल से फूल चुन करके घर के मंदिर में रखती और फिर वहाँ गोहे का गोबर का एक चौका लगाती थी उस पर भगवान रख दिए है। भगवान बोले भगवान उनका वो पीड़ू रख सियासन वो गड़बी भर के ताजे जल की रख देते थे फिर पिताजी महापूजा करते थे फिर गीता पढ़ते थे गीता का महात्म पढ़ते थे। जैसे गीता अध्याय प्रथम पढ़ा फिर उसका महात्म पढ़ना। प्रथम अध्याय को तो मैं सुनती नहीं थी पता नहीं लगता था क्या क्या नहीं है लेकिन जब उसका महात्म पढ़ते थे तो मैं कभी कभी चलते फिरते बैठ जाती थी या खड़ी खड़ी सुन लेती थी। तो लगभग मैंने सभी महात्मा कीर्तन जो थारा गया के महात्म उन्होंने पढ़े उनका कभी कभी जो जो भी सुना हो मुझे याद है उसमें मुझे ये याद है कि मैं क्या सुनती थी कि फिर क्या हुआ स्वर्ग से एक स्वर्ण पद की आई और वो व्यक्ति जिसने गीता को पढ़ा सुना और उस पर आचरण किया वो उसमें बैठ कर उसकी आत्मा उसमें बैठ कर के स्वर्ग को सीधे चली गई। तभी से ये बात सुनी और मन में बैठी है और गीता के महात्म्य का इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस है गीता के पढ़ने सुनने की इतना महात्म है इसका इम्पोर्टेंस है कि सुनने मात्र से पढ़ने मात्र से भी व्यक्ति की जीव आत्मा जो गीता से निकलती है वो कैसे सीधे परमात्मा तक पहुंच जाती है। ये बचपन का एक मगर समृद्धि है यादगार है और फिर धीरे धीरे आज अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करती हूँ। मैंने सचमुच लिखा जब पिताजी का अंतिम समय आया तो उन्होंने 9:15 बजे पूछा टाइम क्या हुआ पिताजी पुणे कृष्णलाल भाई जी को पूछते हैं कृष्णलाल टाइम क्या हुआ पिताजी पुणे में अच्छा 9:00 बजे और 9:00 बजे देखते देखते मैंने उनको देखा मेरी दो बहनों ने देखा कि बोलते हुए शरीर छोड़ दिया और आत्मा निकल गई। तो आज भी मैं इस पर विचार करती हूँ कि वो पूरी गीता पढ़ते थे और गीता का महत्व पढ़ते थे तो उनकी आत्मा को लेने भी स्वर्ग से एक तालकी आई तो उनको ले गई। उस वक्त तो इतना ज्ञान नहीं था रोना धोना मुख्य था विलाप बहुत होता था लेकिन आज मैं उसका इसका जो सत्य है तथ्य है उसको पहचान पाई हूँ। श्लोक 71 श्रद्धा बाणम सूर्यश्च शृणुयादपि यो नरा सोपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यः कर्मणः। श्रद्धा बाणम दृष्टि सहित जो मनुष्य इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा दैवी श्री छोटे पर पुण्य कार्यों के शुभ लोगों को प्राप्त हो जाएगा। देखो इतना महात्मा की जो सुन भी लेगा उसको कितना है जो शुभ लोक में जाएगा नरक में नहीं जाएगा। उन बातों में कहीं भी किसी भी विषय में किंचन मात्र भी कभी कमी ना देखने वाले का नाम अनसूया है। अनसूया कौन होता है? अनसूया श्लोक में आया, जो कभी किसी में कमी नहीं देखता है। ऐसा श्रद्धावान तथा दोष दृष्टि से मनुष्य गीता को केवल सुन भी ले तो वह चीज छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोगों को प्राप्त कर लेता है। लेकिन क्या ईश्वर आई कि हमें किसी के दोष नहीं देखने हैं। जो किसी के दोष नहीं देखता है और केवल गीता ही सुनता है वो सत्य बात है कि वो पुण्य कार्यों के शुभ लोगों को प्राप्त करता है, परंतु हमें दूसरों के दोष नहीं देखने चाहिए। दोष भी देखने क्रिटिसिज्म भी होता है, निंदा चुगली भी होती है, तो भला इस गीता का क्या लाभ? कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए पहले तो हमें अपने मन को शुद्ध करना है। डोंट फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, रादर सी योर ओन फॉल्ट। हमें दूसरों के दोष न देख करके अपने दोष देखने चाहिए, तब हम समझ पाएंगे कि हम किस स्तर पर हैं और हमें कहाँ पहुँचना है। श्लोक 72, कच देता चुतम साथ ते काग्रेन चेतसा कच्चित ज्ञान समूहा धनस ते धनंजय। हे पृथानंदन, क्या तुमने काग्रेन चेत से इसको सुना? वो हे धनंजय, क्या तुम्हारा ज्ञान सत्पन्न वो नष्ट हुआ? भगवान स्वयं पूछते हैं अर्जुन कितना भाग्यशाली था, कितना भाग्यशाली था वो बहुत पूछ रहे हैं कि हे धनंजय इसको सुना, एकाग्रचित सुना। आज मैं इस श्लोक में से अपना वाणी का विराम लिखती हूँ। मेरा सिंधु में बिंदु कन्या सब्जेक्ट है, इसको आपके सामने पढ़ के सुनाती हूँ। लेकिन अभी इसका नाम है शरणागति। सिंधु में बिंदु नामक पुस्तक में तीसरा विषय है शरणागति। अभी हमने पढ़ा गीता के 18वें अध्याय का श्लोक अंतिम भाग में श्लोक आया है कि शरण हो जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्म पे तेजन माम एक शरण गरी हम तो हम सर्व पापे भी हो मोक्षामी माँ सुचा, है ना? क्या कहते हैं भगवान कि तू सबको छोड़कर मेरी शरण में आ जा। और ये गीता अध्याय 18 का 62 श्लोक है, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसाद राम शांति स्थानम प्राप्स्यसि। गीता अध्याय 18 श्लोक 62, हे भरतवंशी अर्जुन तू सर्वभाव से ईश्वर की शरण में चला जा, उसकी कृपा से तू परम शक्ति का परम नाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। हम सब पर प्रभु परमात्मा की विशेष कृपा है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जीव मात्र का प्रतिनिधि बनाकर जीव पर विशेष कृपा की है। गीता संवाद जीव पर बसी कृपा का जीता जागता उदाहरण है। भगवान स्वयं अपने इस जीव को अपने तक पहुंचने के लिए सर्व तथा सरल साधन देख के भी बता देते हैं। ये सर्व तथा सरल साधन भगवत शरणागति का साधन है। शरणागति में संपूर्ण भाव लेना चाहिए कि मन से उस परमात्मा का चिंतन हो, श्रेय की क्रियाओं से इसका पूजन हो, इसका प्रेम पूर्वक भजन हो, उसी के प्रत्येक विधान में परम प्रसन्नता हो, अनुकूल परिस्थितियों में भी प्रसन्न हो और उन्हें भगवान का प्रसाद मानकर शिरोधार्य करें। ऐसी शरणागति होने पर जीव को परम शक्ति और शाश्वत स्थान प्राप्त होता है। जीव संसार से सर्वथा उपरत होकर प्रभु के परम धाम को प्राप्त कर लेता है, हमेशा जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। शरणागति में क्या होना चाहिए कि मन से भगवान का चिंतन हो और अपने शरीर से जिसकी पूजा हो और वाणी से उसका भजन हो और जो कुछ वो देता हो उसमें हम खुश रहे, चाहे अनुकूल परिस्थिति आए सच्चा है प्रतिकूल, हमें सब कुछ क्या मानना चाहिए, भगवान का प्रसाद, वो खुश रहना चाहिए। आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ जय माता दी।